നമോ അരഹന്താരൻ നമോ സിദ്ധാരൻ നമോ ആയരിയാരൻ നമോ ഉപചാരയാരൻ നമോ ലോറി സസ്യസ്വാഹൂരൻ മംഗലംബകീരോ മംഗലം കോട്ട മുകളിൽ മംഗളം കുന്ത കുന്താട്ടോസ്തു മംഗളം സർവമംഗല്യ മംഗല്യം സർവ കല്യാണകാരകം തുടാനാം സർവധർമാണാം ക്ഷേമം ചേർത്തു ശാസനം ക്ഷേമം ചേർത്തു ശാസനം ക്ഷേമം ചേർത്തു ശാസനം ഭുവന മേ സാരൂപ സമയത്താൽപര്യം ചർച്ച
പരിവാര ശരീര സുന്ദര ശൃംഗാരൂപത ബന്ധ ഹോത്ത നീച ഗോത്ര കാബന്ധ ഹോത്തശുഭ നാമ കർമ്മ കാസേ ശരീര അംഗ കുരൂപ ബനത്തെ സുന്ദര നീ ബനത്തെ ബന്ധ ഹോത്ത इस पर एक बहुत सुंदर बात ये भी है कि नामकर्म में दो भेद और है 93 नामकर्म की प्रकृति में 93 93 प्रकृतियों में से चार प्रकृतियां यदि हम देखें तो रूप के लिए है एक है शुभ प्रकृति शुभ नामकर्म एक अशुभ नामकर्म ये वाली प्रकृति से शरीर के अंग सुंदर होते हैं और कुरूप होते हैं शुभ नामकर्म से सुंदर अंग बनते हैं और अशुभ नाम कर्म से अशुभ कुरूप अंग बनते हैं ठीक है तो लेकिन दो नाम कर्म की प्रकृतियां और बहुत गजब की है एक सुभग नाम कर्म और एक दुभग नाम कर्म कौन कौन सी सुभग और दुभग बराबर तो देखिए किसी के पास शुभ नाम कर्म का उदय हो तो वो कैसा होगा सुंदर होगा बराबर क्योंकि शुभ नाम कर्म से सुंदर शरीर मिलता है लेकिन यदि उस सुंदर व्यक्ति के दुभग नाम कर्म का भी उदय है साथ में तो दुभग से क्या होता है लोग आपसे प्रीति नहीं करते आपको कोई पसंद नहीं करता तो आपने देखा होगा बहुत सारे सुंदर लोग होते हैं उनको भी पसंद नहीं करते वो तो घमंडी है वो अच्छे से बात नहीं करते उनके पास कोई जाना नहीं चाहता उनको कोई ज्यादा अच्छा नहीं मानता राइट लेकिन यदि किसी के अशुभ नाम कर्म का उदय है सुंदर नहीं है वो लेकिन उसके सुभग नाम की प्रकृति का उदय है यानी कि उसको सब पसंद करते हैं सब चाहते हैं हम उनके जैसे हो जाए हम उनके पास रहे हम उनसे बात करें तो कई बार आपने देखा होगा जो लोग सुंदर भी नहीं होते लेकिन कुछ लोगों के प्रति कैसा आकर्षण एक अट्रैक्शन होता है राइट वो बॉडी से सुंदर नहीं है बट वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं हम उनके साथ पास में रहना चाहते हैं राइट तो ये सुभग और दुभग, सुभग यानी जिससे आपको सब लोग प्रीति करें, आप सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन आपका एक चार्म रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगा कि आपका स्वभाव इतना अच्छा हो कि सब लोग एकदम आप सब लोग आपके ओर खींचे चले आए। तो ये वाली प्रकृति कि शरीर की सुंदरता से जगत में अच्छा माना जाए, जगत में प्रीति करे, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, क्योंकि शुभ और अशुभ नाम कर्म ये पुद्गल विपाकी प्रकृति है। प्रकृतियों के उदय के हिसाब से चार भी होते हैं, भाव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। जिन प्रकृतियों का उदय किसी क्षेत्र निश्चित क्षेत्र के लिए होता है वो क्षेत्र विपाकी प्रकृति। जैसे यदि हमारा यहाँ से मरण हुआ और हमको स्वर्ग में जन्म लेना है, तो यहाँ से स्वर्ग तक का रास्ता तो हमको पता नहीं कहाँ जाना है, कोई फ्लाइट नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, तो हमको कौन लेकर जाएगा कि विग्रह गति में अनुपूर्वी नाम की प्रकृति, नामकरण की प्रकृति है, नरक प्रत्यानुपूर्वी, क्रेंच प्रत्यानुपूर्वी, ये वाली प्रकृति ये आपको विग्रह गति में लेके जाती है, जरूर उसका उदय आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्र विपाकी प्रकृति। ठीक है,
अनुपूर्वी अनुपूर्वी नाम कर्म है, और मुझे अनुपूर्वी नाम कर्म और क्षेत्र विपाकी दोनों में फर्क नहीं समझ में आया मुझे।
क्षेत्र विपाकी मतलब जिस कर्म का उदय एक निश्चित क्षेत्र के लिए है और वह निश्चित काल के लिए उदय में रहती है। जैसे अनुपूर्वी कर्म क्या करता है, एक तो हमारे पास गति है, त्रिरंज गति, चार गतियां हैं, तो गति नाम कर्म है, राइट, उससे हमको गतियां मिलती है, मनुष्य गति, त्रिरंज गति, लेकिन उन गतियों में पहुंचने के लिए एक गत्यानुपूर्वी कर्म है कि हम उस शरीर हम उस जगह पर पहुंचे जहाँ हमको जन्म लेना है, क्योंकि तीन लोग कितना बड़ा है, 343 गणराज्य, यहाँ से मरण होगा तो हमको ऐसा नहीं होता कि हम पास पास में जन्म ले रहे हैं कि इंडिया से हुआ कोई और अब यूएस में जन्म ले रहे, ये तो बहुत पास हो गया। अब कोई मध्य लोक में मरा है तो उसको ऊर्ध्व लोक में जाना पड़ा, उसको अधो लोक में जाना पड़ा, फिर दूरियां है ना बहुत ज्यादा, ये जो दूरियां होती है तो इन पर ले जाने के लिए तो हमारा मरण के समय जो अंतिम आकार होता है आत्मा का, शरीर का, उसी आकार के प्रदेश वैसे के वैसे रह जाते हैं, जिस आकार में हमने शरीर छोड़ा हो आत्मा उसी आकार का रह जाता है, और वह आकार का आत्मा जहाँ पर दोबारा जन्म लेना हो उस जगह पर जाता है, और वो चौथे समय तक वहां पहुंच जाता है, अधिकतम चौथे समय तक वहां पर जन्म हो जाता है, तीन समय ज्यादा से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो कौन लेके जाता है, ये अनुपूर्वी नाम कर्म उस समय उदय में आता है, उसके कारण आत्मा के प्रदेश एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाते हैं मरण के बाद। तो ये कैसी प्रकृति हुई, क्षेत्र विपाकी, इसका उदय एक निश्चित क्षेत्र के लिए, एक स्पेस के लिए है, राइट, विग्रह गति में इसका उदय है। अब कुछ प्रकृतियां होती है जिनका उदय किसी भव में, मतलब किसी पर्टिकुलर भव में ही उदय आएगा, तो उनको बोलते हैं भव विपाकी। जैसे जब से हमारा पिछला मरण हुआ और जब से हमारा यहाँ का मरण, जब यहाँ का मरण होगा, तो इतने इस बीच के दरमियान ऐसी कौन सी प्रकृति है जिसका पूरा का पूरा हमको इसी भव में, मतलब मरण के बाद उसका उदय रहेगा नहीं और मरण के पहले उसका उदय, जन्म के पहले उसका उदय था नहीं, ऐसी कौन सी प्रकृति है, तो उसको बोलते हैं आयु कर्म। आयु कर्म सिर्फ उतने काल के लिए रहेगा जब तक, यानी कि जब तक आयु कर्म है तब तक हमें शरीर में, जैसी आयु गई हम बस छोड़ देंगे शरीर को, तो आयु कर्म है भव बनाता है, हम मनुष्य तब तक बने रहेंगे जब तक मनुष्य आयु है, हम तिरंज कब बन जाएंगे, तब तक बने रहेंगे कि जब तक तिरंज आयु होगी। तो आयु कर्म आपने जब आठ कर्मों के चित्र देखे होंगे, उसमें देखा होगा आयु कर्म का चित्र बनता है, उसमें एक व्यक्ति के पैर को बांध देते हैं, उसका पैर बंध जाता है लकड़ी से, उसको बांध देते हैं। आयु कर्म का काम है कि जीव को बांध कर रखना, अथवा बांध कर रखना गति में बांध कर रखना, किसमें बांध कर रखना, शरीर में। तो एक विशिष्ट गति के जो शरीर है उसमें जीव को बांध कर रखना एक निश्चित अवधि तक, ये आयु कर्म का काम है। ठीक है, राइट। तो आयु कर्म होगी भोग विपाकी। अब कुछ होती है पुद्गल विपाकी और कुछ जीव विपाकी। तो सारी की सारी घातीय कर्म की प्रकृतियां जीव विपाकी है और कुछ अघातीय कर्म की प्रकृतियां भी, जैसे कि उच्च गोत्र नीच गोत्र, साता वेदनीय असाता वेदनीय, ये सब जीव विपाकी है। इन सब का उदय जीव में देखा जाता है। ठीक है, हेलो, हाँ, ये जीव विपाकी। और कुछ प्रकृतियां है पुद्गल विपाकी है, जिधर पर नाम कर्म की प्रकृतियां है सारी, और वे नाम कर्म की प्रकृतियां
अबे ये आपने बोला उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो वो जीव विपाकी, जीव विपाकी उसको क्यों बोलते हैं? वो भी एकदम
बहुत सुंदर प्रश्न आपसे पूछा। ये जीव विपाकी प्रकृति है, ठीक है, साकार वेदनी असाकार वेदनी भी और उच्च गोत्र नीच गोत्र थे। और ये अब गोत्र को जीव विपाकी बोलना ऐसे क्यों? गोत्र तो हम कैसे कुल में जन्मे हैं, उसके उसके उसका लेना देना होगा ना। लेकिन हमने पहले बात करी थी इस बात की कि जैन दर्शन में आप कहाँ जन्मे हो, किस परिवार में जन्मे हो, उससे उच्च गोत्र नीच गोत्र का निर्धारण नहीं है। ये हम लोग कौन से उच्च गोत्र का, कौन से नीचे गोत्र का, ये वाली बात हमारे गुणों से, हमारे परिणामों से गोत्रों को देखा जाता है। जैसे कि हम कहानियां पढ़ते हैं बहुत सारी, तो राजा तो इतना धर्मात्मा, राइट, उसने बोला अंटार्कटिका में हमारे राज्य में कहीं भी किसी की भी हिंसा नहीं होगी, और जो हिंसा करेगा वह राजाज्ञा का विरोधी होगा, दंड का पात्र होगा। तो राजा तो धर्मात्मा, वो आत्मिक एकदम पूजन ध्यान में निकालना चाहता है और सब भी एकदम अहिंसा से उस 8 दिनों में आराधना करें, ये चाहता है। लेकिन उसी का पिता, अब उसको तो मांस खाना है, तो वो अब जैसे तैसे तड़प तड़प कर जैसे ऐसे दिन निकालता है और कहीं से युक्ति निकालता है, कहीं से तो मुझे मांस खाने मिले। तो अब राजा धर्मात्मा, लेकिन उसके बेटे का अब कैसा गोत्र कहा जाए, ऊंचा नीचा क्या है अभी, कि उसके अंतरंग परिणाम ही अच्छे नहीं है। तो ये जो गोत्र कर्म है इसके कारण बाहर में आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर नीचे होता हो ऐसा नहीं है। किसी नीच गोत्र वाले का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी वेरी हाई, उससे गोत्र का निर्धारण नहीं है, बराबर। लेकिन अब उसके परिवार में, अब उसकी जीवन में 7वें से नहीं चलते हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है।
एक मिनट, हाँ
મરણ વખતે જે આકાર હોય આત્માનો, એ આકાર માં જ પછી બીજો જન્મ થાય, તો પછી પુરુષ આકાર માં આત્મા હોય તો પુરુષ થાય ને, સ્ત્રીમાં હોય તો સ્ત્રીમાં થાય, એવું માનવું?
એટલે એટલે છેલ્લો આકાર જે હોય ને એ પછી બદલે, એટલે પછી વિગ્રહ ગતિમાં અમુક સમય પછી મતલબ થી બદલી જાય કે એવું કઈ છે કે એ વારે પછી હવે જરાક ચેક કરવું
વિગ્રહ
ગતિ માં રે ને ત્યાં સુધી જેટલો આકાર રહે પછી તો બીજે જાય તો ત્યાં એનો આકાર ચાલે ત્યાં એનો આકાર સપોઝિંગ હવે એનો મનુષ્ય માંથી સપોઝિંગ કૂતરો થવાનો
હોય ગતિ માં જાય કે કઈ ગતિ માં
જવાનો હોય તો એટલે અહીંયા ત્રીજા કે ચોથા સમય સુધી સપોઝિંગ ચોથા સમય એ કૂતરો બને તો ત્યાં સુધી ચોથા આકાર સુધી એનો એ મનુષ્ય નો આકાર રે અને
આકાર રે પછી જન્મ થાય પછી તો ત્યાંના પરમાણુ ગ્રહણ
થાય તો ત્યાંનો
આકાર ઇન બિટવીન ટાઈમ માં જે અહીંથી આકાર ગયો હોય એ જ આકાર છે
હજુ તો ક્યાં બીજા પરમાણુ તો હજુ ગ્રહણ કરતા ના હોય ને તે વખતે હજુ તો અંદર જ્યાં જન્મ થવાના ત્યાં લે ત્યાંના પરમાણુ ગ્રહણ કરીને ત્યાં પછી શરીર બને એનું નાન કર્મ જે પ્રમાણે
ગોત્ર કી બાત કરતે થે મેને બોલા કે વો જીપી પાર્ટી ગોત્ર ઓર આપને આપને બોલા કે જૈન ધર્મ મે પરિણામો સે ગોત્ર ડિસાઇડ હોતા હૈ ઇઝ ધેટ રાઇટ વો મેને એસા લિખા થા
બસ ઇતના ઇતના હી સુના આપ લોગોને ઉસકે આગે કા નહીં સુના કુછ દેશ
આપને નહીં આપને ફિર વો બોલા કે એક રાજા પુત્ર માંસ ખાને
કા સાત વચન સાત વચન કે પરિણામ વાળા નહીં સુના આપને
નહીં 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 વો તો નહીં સુના
અચ્છા ઓકે મેં તો આઈ થિંક ફિર પાંચ છ મિનિટ તક બોલતા હી રહા મુજે પતા હી નહીં પડા ફોન ડ્રોપ હો ગયા ઓકે ઓકે તો દેખીએ રીચ પુત્ર રુચ પુત્ર મતલબ સાત વ્યસન મન ખાના જુવા ખેલના
અનુભવજી આપ થોડી 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 દેર કે બાદ પૂછના કે હા સમજ આતા હૈ કે સુન રહે કે તો કે હમ જવાબ દેંગે તો આપ અગર હમારા જવાબ ના આવે તો આપકો પતા લગેગા કે પ્રોબ્લેમ હા
હા દુબારા
સમજાવો યે ગોત્ર કર્મ કા ઓર સુધાબેન તમારો ક્વેશ્ચન હતો સુધાબેન
હા બને હું પોતે ડ્રોપ થઈ ગઈ એટલે રી એન્ટર થઈ
ઓકે ના હજી યુ ડિડન્ટ મિસ એનીથિંગ હા પહેલે સુધાબેન કા ક્વેશ્ચન થા વો વિગ્રહ ગતિ કા વો ક્યાં હૈ અનુપૂર્વી કા વો મનુષ્ય મનુષ્ય આકાર હોતા હૈ અનુભવજી હો
હા 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 મનુષ્ય આકાર હોતા હૈ
સુધાબેન પૂછતે થે કે જો વિગ્રહ અભી હમ મનુષ્ય હૈ બોલો સુધાબેન બોલો
હા જબ જબ હમ મર જાતે હૈ તો જૈસે મેં સ્ત્રી પર્યાય હું પુરુષ પર્યાય હું તો વૈસે આકાર હી કહા તક રહેતા હૈ ઓર જન્મ જો હોતા હૈ વો પુરુષ મેં યા સ્ત્રી મેં કિસ મેં હો સકતા હૈ
હા બતાતા હું મેં દેખીએ આપને કભી સુના હૈ ગધે કે સીમ નહીં હોતે રાઈટ ગધા જો હોતા હૈ ઉસકે સીમ નહીં હોતે
નહીં બરાબર
હા લેકિન સીમ વાલા ગધા દેખા હૈ કભી
નહીં દેખા નહીં સિંગ હોતે નહીં તો સિંગ વાલે દેખા નહીં હૈ
તો કભી હો સકતે હૈ ગધે કે સિંગ
નહીં
નહીં હો સકતે હમારે જૈન આચાર્યો ને સિદ્ધ કિયા કે ગધે કે સિંગ હો સકતે હૈ क्योंकि एकांत तो कुछ भी नहीं है और किसी ना किसी अपेक्षा से कुछ भी सब कुछ सच है।
सिंह भी है और गधा भी है, उसके पर लगा दो, कार्टून में हो सकते है।
अरे नहीं 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 वैसे नहीं,
रियल में तो नहीं।
देखिए क्या होता है, क्या होता है, हमारा जब मरण होता है तो मरण के समय, आखिरी समय में, मरण के आखिरी समय में जिस आकार में हमारी देह छूटती है, जो भी आकार हो, अब वो बैठा हुआ हो, लेटा हुआ हो, पीड़ा में हो, कोई एक्सीडेंट में गया तो हवा में भी उसको गाड़ी ने हवा में उछटा दिया और उसकी हवा में ही डेथ हो गई, तो जो आकार रहेगा, आखिरी आकार जो पोजीशन रहेगी शरीर की, यानी कि आत्म प्रदेशों की, उस आकार में ही वो फ्रीज हो जाएगा, वो वाला आकार फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। शरीर से वियोग हुआ, वो वाली आयु खत्म हो गई, ठीक है। शरीर गया मतलब आयु खत्म हो गई, वो मर गया, राइट। और जैसी आयु खत्म हुई तो क्या होगा, दूसरी आयु शुरू हो जाएगी, राइट। हेलो, राइट, बराबर। दूसरी गति भी शुरू हो जाएगी, मतलब दूसरी गति शुरू हो जाएगी, बराबर
बराबर।
देखिए दो काम होंगे, जैसे कि एक गधा है और गधे को गाय बनना है, अब गाय के तो सींग होते हैं ना, राइट राइट। तो अब क्या होगा, जैसे ही उसका मरण होगा गधे का, बराबर, तो उसके शरीर का आकार कैसा रहेगा,
गधे जैसा,
गधे जैसा। लेकिन अब उसकी जो गति है वो कौन सी शुरू हो गई,
गाय की,
गाय वाली, बराबर। तो उसके आकार में तो गधा दिख रहा है लेकिन वो गाय है, तो हम उसको रिवर्स करते हैं, किसी गाय का मरण हुआ और उस गाय का आकार है गाय जैसा सींग वाला, लेकिन वो गाय कहलाएगी अब गधा, तो वो सींग वाला गधा बन गया, राइट।
तो
ये ऐसा
तो
अपने न्याय के
साथ पहले समय से ही वो कहलाएगी,
क्योंकि तुरंत ही, क्योंकि उसकी गति तुरंत चालू हो गई, अब उसकी गति तो वह गति उस जीव हो क्या हो वाला, बराबर। शरीर मिलेगा तीन समय बाद, लेकिन उसी समय से उसका गति तो वो चालू हो गया त्रिंश प्रत्यानुपूर्ति से। तो ये जब तक जितने समय विग्रह गति में रहते हैं उतने समय आत्मा के प्रदेशों का आकार वो होता है जो आखिरी शरीर छोड़ा हो, वो उसका आकार होता है, लेकिन उसका नाम होता है जो नया गति में गया है। तो त्रियंश गति से मरकर मनुष्य होना है तो उसका आकार होगा त्रियंश का, लेकिन वह कहलाएगा मनुष्य। मनुष्य गति से क्या देव होना है तो उसका आकार होगा मनुष्य का, आत्मा के प्रदेशों का, लेकिन वह कहलाएगा देव, ठीक है। ठीक है, और कोई इस पर प्रश्न,
बोलो तो अनुभव जी, अजी मेरे दिमाग में नहीं बैठा वो।
ओके, हम जिस, जैसे अभी हम मनुष्य, जैसे कि कोई पुरुष पुरुष के शरीर में है और कोई महिला महिला के शरीर में, राइट। तो आखिरी जब आप, जब उसका मरण हो रहा होगा उस समय आखिरी समय में उसके जो आकार रहेगा आत्मा के प्रदेश उसी आकार में दूसरी गति में जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, बीच में हिलेंगे डुलेंगे नहीं।
એટલે જેવા આકાર, સપોઝિંગ તમે સૂતા હો, પડખું વાળીને સૂતા હો, જેવો આકાર હોય,
ના, ધેટ ટાઈમ વોટ એવર યુ થિંક ધેટ વોઝ આકાર ઓર સમથિંગ ડિફરન્ટ,
ના ના, આઈ થિંક શરીર કા આકાર ના અનુભવજી,
शरीर का जैसा आकार होगा वैसे तो आत्म प्रवेशों का आकार होगा ना। देखो जब शरीर का आकार बोलते हैं ना, जैसे अरहंत भगवान का भी, सिद्ध भगवान का भी किंचित न्यून पुरुषाकार जो बोलते हैं, तो उनका आखिरी शरीर, तो शरीर का जब आकार बोलते तो हमको आत्मा का आकार समझना चाहिए, क्योंकि शरीर में आत्मा हर एक क्षेत्र में व्याप्त है, शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्र संबंध है, लेकिन आत्मा दिखती नहीं, तो हम कैसे बताएं कि आत्मा का क्या आकार है, कि जैसा शरीर का आकार है वैसा आत्मा का आकार है, राइट? जैसे कि हमने एक डिजाइन वाले जग के अंदर पानी रखा, तो पानी का क्या आकार है, जैसा जग का आकार है, राइट? हम पानी के आकार को कैसे डिस्क्राइब करें? तो ऐसी आत्मा को शरीर के आकार से बताते हैं। तो जो आखिरी शरीर की पोजीशन होगी, वैसे की वैसे आत्मा के प्रवेशों की पोजीशन में आत्मा विग्रह गति में गमन करेगा। ये
थैंक यू।
ओके,
आप समझ गए।
हाँ, तो अब जो गोत्र कर्म है वह है जीत पाकी, मतलब उसका आप किस बड़ी रेप्यूटेड फैमिली में जन्मे हो, आप किस परिवार में, जैन कुल में जन्मे हो कि बौद्ध कुल में जन्मे हो कि क्रिश्चियन हो कि मोमिडन हो कि हिंदू हो, क्या हो, इन सब से गोत्र कर्म का निर्णय नहीं होता, हमारे परिणामों से गोत्र कर्म चलता है। तो हमारे साथ जैसे इनके परिणाम है, जुआ खेलने में हमको मजा आता है, शराब पीने में मजा आता है, मांस भक्षण में, शिकार खेलने में, वेश्यागमन में, ये सारे जो सात वचन के परिणाम है, ये नीच गोत्र के परिणाम है। बराबर, अभी तो नहीं होता इतना, लेकिन पहले यहाँ पर अभी भी इंडिया में जैसे घरों पर कोई लोग सफर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं या हॉस्पिटल से आते हैं, राइट? तो घर पर आते हैं तो घर पर पूरे कपड़े चेंज करते हैं और पहले नहाते हैं, कुछ टूटे नहीं है घर पर, राइट? ऐसा इंडिया में पहले भी होता था और अभी भी होता है कुछ कुछ जगह पर। जैसे कि वॉशरूम जाएंगे तो उसके कपड़े अलग होंगे, किचन में जाने के कपड़े अलग होंगे, उसको सोला बोलते हैं किचन वाले कपड़ों को, वॉशरूम में जाएंगे तो वहां पर कपड़े अलग रहेंगे, उन कपड़ों को बाहर नहीं लाएंगे, फिर शुद्धि करके बाहर आएंगे, फिर दूसरे कपड़ों को पहनेंगे। बराबर, जो शुद्धि अशुद्धि का इतना विचार किया जाता है, मंदिर घर के अंदर घुसेंगे तो घर के अंदर पहले दरवाजों पर पानी रखा रहता था, पैर धोकर हाथ धोकर घुसते थे, अपने अभी तो मंदिरों के बाहर रखा रहता है। बाकी ये पहले शुद्धि अशुद्धि का इतना विचार किया जाता था, क्योंकि हमारे कपड़े हमें कौन छू रहा है, किसमें आज स्नान किया नहीं किया उसने हमको छू लिया, कौन मांस भक्षण करता है, किसको सूचक लगी है, ये सारे। तो ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में तो उसका कुछ विचार नहीं, वहाँ भीड़ होगी या वहाँ पर जो सीट पर है उस सीट पर लोगों का स्पर्श होगा, अब हमें सबका तो नहीं पता किसने कैसी शुद्धि रखी। तो इस हिसाब से शुद्धि अशुद्धि का, भोजन पर अपना भोजन एकदम शुद्धता से बनाना, बराबर हाथ धोकर भोजन करना, ये सारे जो क्रियाएं होती है, ये इतनी शुद्धता का विचार करना, ये उच्च गोत्र का काम है। नीच गोत्र में कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा, मतलब जैसे चाहे जब चाहे भोजन बन जाना, रात में बन जाना, बिना नहाए बन जाना, बराबर अंदर बाथरूम में गए हैं, बाथरूम में ही न्यूज़पेपर लेके वहीं पर पढ़ रहे हैं, वहीं पर फोन पर बात कर रहे हैं, सात जगहों पर मौन का प्रावधान है, हमें सात जगह बातें ही करनी चाहिए, स्नान करते हुए, बल निक्षेपण करते हुए, भगवान की भक्ति पूजन करते हुए, भोजन करते हुए, इस हिसाब से तो इन जगहों पर बात करना, ये नीच गोत्र का सब कार्य है कि इनकी अंतरंग में जो परिणाम होते हैं उसको नीच गोत्र कहते हैं। तो कोई जैन भी हो और मद्यपान आदि करे, शिकार के लिए, तो वो उच्च गोत्र का नहीं है, नीच गोत्र का है, ठीक है? तो गोत्र इसलिए जीव विपाकी कर्म प्रकृति है, इसलिए अपने यहाँ गुणों की पूजा है, जैसे की जाति की पूजन नहीं है, किसी के कुल की नहीं है, बराबर, ठीक है? गोत्र कर्म में किसी को कोई प्रश्न
नहीं?
कपड़े बदलो, वहाँ से वहाँ जाओ।
नहीं नहीं, कपड़े बदलने नहीं, आंटी कपड़े बदलने नहीं, शुद्धि का विचार रखना, हम कभी बाहर जैसे काम के लिए बाहर से आते
तो पहले जमाने में था, बाहर से आते हम छोटे थे तब।
आपने कभी देखा होगा जब हम भगवान को आहार देते हैं या भगवान का प्रक्षाल करते हैं, दोनों समय हम वस्त्र बदलते हैं, देखा है आपने?
हाँ,
क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि वस्त्र गृहस्थी के होते हैं। देखिए पहले क्या होता था, अपने अभी तो ऐसा रहता है कि हमारे पास जो घर पर बेडरूम्स में बेड लगे होते हैं वो बिल्कुल हमेशा लगे रहते हैं। पहले इनको रोल कर देते थे, क्योंकि एक बार सुबह उठते हैं तो फिर दोबारा इन कपड़ों में, हमने नहाकर कपड़े पहने, हम वापस बेड पर नहीं बैठते, क्योंकि बेड पर एक तो प्रमाद है और दूसरा बेड को शुद्ध नहीं माना जाता, बराबर। तो ये सारी चीजें इन कपड़ों में, तो लेकिन घर के कपड़ों में सब छिल जाता है, तो फिर उसके कारण हम अंदर नहीं जाते। जैसे कि आज भी जो योग की चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने पानी को नीचे मत रखो, आप जो पानी या भोजन लेते हो इसको बहुत शुद्धता से लो। इसको जो मैं अजैन लोगों की बात बता रहा हूँ, वो क्या करते हैं, पंचभूत तत्व की थेरेपी करते हैं और उसका योगा दिखाते हैं, बताते हैं, राइट। तो पंचभूत तत्व क्या क्या है, हवा है, पृथ्वी है, सॉइल मिट्टी, पानी है, आग है, तो इन सब की कैसे योग करते हैं, तो वो पानी को बहुत रिस्पेक्ट से ऊपर रखते हैं और पानी को बहुत शुद्ध पानी को पीते हैं, उसको मतलब स्ट्रॉन्ग, उसको पीते पीते अच्छी अच्छी भावनाएं भाते, नदी में सॉरी अग्नि में अग्नि के पास रहते हैं, और अग्नि के पास मतलब आग के पास, और उसके प्रति अच्छी भावनाएं भाते। ये लोग तो ये करते हैं, ये सब पागलपन जो चलता है, लेकिन ये युक्ति बहुत पहले से चली आई है, जैसा होगा अन्न जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जितनी शुद्धता से भोजन बनाते हैं, हम पानी को नीचे नहीं रखते, भोजन की किसी सामान को नीचे नहीं रखते, पूरा धोकर बहुत शुद्धता और यत्न से, उतना मन के परिणाम अच्छे रहते हैं। इसलिए जब भी तीर्थंकर आदि के आहार कल्याणक में आप रहे होंगे तो उनका जो आहार होता है, उनका आहार बनाया भी जाता है, तो उसकी भी विधि होती है बहुत सुंदर। तो फिर हम आहार दान भी देते, हमारे कितने चढ़ते हुए परिणाम रहते हैं। अब भगवान के मंदिर में अकेले वस्त्र बदल लेते हैं तो हमारे परिणाम बहुत ऊंचे हो जाते हैं, अरे आज तो भगवान को हमको छूने को मिलेगा। तो ये वाले तो जो नॉर्मल कपड़े है उनको बाथरूम में नहीं ले जाते, वहां पर अंदर सारे कपड़ों को अलग कर देते हैं, फिर वहां पर बाथरूम में जाते हैं। ऐसे ही चौके में पहले आपने सोले का नाम सुना होगा, यहाँ बहुत चलता है सोला, जो खाना बनाते हैं उनको फिर कोई छूता नहीं, उनकी वो खाना बनाने का ये सारी अलग होती है, तो वो कुछ भी स्पर्श नहीं करते घर का और बिल्कुल शुद्धता से भोजन बनाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया है ऐसा यहाँ पर, तो ये सिर्फ शुद्धता अशुद्धता के विचार के लिए है।
हेलो, सचिन भाई ड्रॉप थे क्या?
सचिन भाई ड्रॉप थे,
हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट।
અમારા પંડિતજી ડ્રોપ થઈ ગયા, સચિનભાઈ તો અહીંયા છે
ને, એટલે સચિનભાઈ છે ને, એટલે
આઈ નો આઈ નો, એટલે અત્યારે આપણે 14મી કથા આલે કે 13મી નો હજી
ના, એટલે 14મી માં,
કેમ કે આ બધા 8 મદ તો 13 માં આવે,
8 મદ નહીં એટલે 8 મદ
તો 13 ની અંદર હું અત્યારે જોઉં છું, એટલે ઉત્તરાર્ધ છે,
પૂર્વાર્ધ છે ને એમાં, જો મદ ન મદ જ્યુ પ્રભાત કો કરે ન જ્યુ
તપકો મદ ન
જોયે
કરે ન તો નીચે જાને, એટલે એમાં જો પિતા ન
હેલો અનુભવજી,
मैं कहाँ पर था, क्या सुना था मैंने आपसे? किसी का मरण होता है यहाँ पर?
नहीं, वो
यहाँ पर किसी का
अभी आप वो सातवीं
करने के लिए बोलते थे ना, ठीक है, स्वच्छता के लिए
कपड़े शुद्धि।
जैसे किसी के यहाँ कोई मरण होता है तो मरण होता है बहुत अशुद्धि मानी जाती है, तो उसके तीसरे दिन फिर पूरे घर को धोया जाता है, राइट। तो यदि किसी के यहाँ मरण हुआ है और हम उसके घर जाते हैं तो हम फिर जब वापस आते हैं तो हम अपने घर पे नहीं घुस पाते, पहले ही नहाना पड़ता है। आप लोगों ने ऐसा देखा है? नहीं देखा है? वहाँ पर होता है ऐसा कुछ?
पहले यहाँ
पहले फ्यूनरल में जाते हैं तो फ्यूनरल से आकर फिर किसी को नहीं छूते, छूते नहीं है फ्यूनरल में जाओ तो, मगर वैसे किसी के वैसे बॉडी तो नहीं होती ना घर पर, तो अगर वहाँ जाओ तो फिर ऐसा आकर नहाना नहीं यहाँ होता, मगर
यहाँ पर ऐसा रहता है। हाँ, इंडिया में तो भी ऐसा रहता है कि किसी के उसके घर के जाते हैं तो जितना उसके घर की शुद्धि की होती तो फिर जाते हैं तो आकर नहाना पड़ता है। तो अब कोई हॉस्पिटल गया, राइट, तो हॉस्पिटल में तो यही लगा हुआ है, कोई मर रहा है, किसी का जन्म है, तो हॉस्पिटल को बहुत अशुद्ध माना जाता है, बराबर। तो वहां पर आते हैं और ऐसे ही किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम जाएंगे, बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, हमको नहीं पता है वहां पर जो जीव आए हैं उनकी क्या चल रहा है, उनकी कितनी शुद्धि है, कितनी शुद्धि है, बराबर। तो इन सब में फिर पहले ऐसा माना जाता था कि पहले लोग आकर शुद्धि रखते थे, लेकिन अब आज के टाइम पर इतना पॉसिबल नहीं होता, तो धीरे धीरे सब जाता जा रहा है। हेलो, तो आज के टाइम पर इतना पॉसिबल नहीं है, तो अब ठीक है वो चीजें कम होती गई, बट पहले के लोग इन सब का बहुत विचार रखते थे, और इससे अपने शरणागत के शास्त्रों में भी हमारे परिणामों का बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। हम कितनी शुद्धता से रहते हैं उससे हमारे परिणाम भी वैसे ही खिले खिले रहते हैं। ऐसा ये सारी उच्च गोत्र की क्रियाएं कहलाती है, जो कुछ भी है न्याय की नीति की, किसी की सहायता करने की, ये सब उच्च गोत्र की है, और साथ व्यसन के परिणाम और उल्टे सीधे कार्य करने की, ये सब नीच गोत्र की क्रियाएं।
हाँ, वो तो समझ में आता है लॉजिकल। हाँ, और कई कई जगह हाँ, तो वो ऐसा है कि वो, मगर वो ऐसा ये गोत्र के हिसाब से ये परिणामों का वो ऐसे वो एंगल से नहीं सोचा था, परंतु वो जो शुद्धि के हिसाब से के है कि कई जगह हम जाते तो क्या ऐसा है कि वहाँ वो अगर हॉस्पिटल जाओ कोई बीमारियां हो एक तो वो वहाँ जर्म्स होंगे, इसलिए आकर फिर कपड़े बदल दो।
अरे नहीं 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 नहीं, वो तो जो है वो है, लेकिन तुम्हारे परिणाम नहीं बनते। नहीं नहीं, उससे नहीं है इसका रिलेशन। मतलब सीधी सीधी बात है कि कैसे बोले इसको, हम कहीं जा रहे हैं, हम बहुत सच कर जा रहे हैं, और कोई बहुत गंदी अवस्था में हमें आकर छू जाए तो हमको अजीब लगने लगता है ना, या फिर हम किसी को देख ही लेते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं और हमने कोई शॉप ऐसी देख ली, राइट, हमारे परिणाम तुरंत मलिन हो जाते हैं। तो इनका संबंध उससे है।
अनुभव जी, यहाँ हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, परंतु हमारे उसके पीछे अभिप्राय हमारा क्या है कि अगर मैंने अच्छे कपड़े डाले, कोई वैसा जिसके हाथ गंदे होवे वो मुझे टच कर लेवे तो मुझे ऐसा, मेरे अभिप्राय में क्या है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, उसलिए मैं तो मेरे परिणाम बदले, तो ये अभिप्राय की पीछे वो पता नहीं मैं इस
हाँ 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 देखिए अभिप्राय जो होता है और क्रिया होती है और बीच में परिणाम रहता है बराबर। तो अभिप्राय तो तत्व विचार पूर्वक ठीक किया जाता है कि हमारा शरीर है कि नहीं है, या जीव हूँ कि नहीं हूँ, ये कपड़े आदि परिवार आदि मेरे है कि नहीं है, ये अभिप्राय की बात है। फिर अभिप्राय सम्यक हो, फिर जितनी कषाय जैसे उदय हो, जितनी कषाय का उदय हो, जितनी हमारी कषाय मंद पड़ी हो, उसके हिसाब से हमारे परिणाम बनते हैं बराबर। तो सम्यक दृष्टियों के भी अभिप्राय तो निर्मल है, लेकिन अब जैसे कषाय का उदय होगा वैसे परिणाम वो भी करते हैं। तो युद्ध भी करते हैं, भोग भी करते हैं, प्रीति स्नेह भी करते हैं अपने पुत्र पत्नी सबसे, लेकिन इस सबके बीच जो क्रिया होती है, क्रिया का अभिप्राय और परिणाम से कोई लेना देना नहीं। क्रिया होती है लोक नीति की, क्रिया होती है बाहर के विवेक से चलने की। क्रिया भी होगा जो बाहर में लोक मान्य हो और धर्म मान्य हो और जो कि इष्ट हो, जिससे जगत में भ्रांतियां ना फैले।
हाँ।
तो क्रियाएं तो वैसी, जैसे कि अभी एक प्रश्न होता है कई बार पूछा जाता है कि अब देखो आपके कुएं तो बचे नहीं है और आप पानी को छानते हो बराबर।
हाँ।
तो पानी छानते और बिलछानी देते हो तो जीवों की तो रक्षा होती नहीं होगी, क्योंकि आप बिलछानी दोगे तो कहाँ पर उसको बहाओगे? आप वापस उधर नाली में डाल के आओगे जहाँ पर आपका वॉश बेसिन, आप उसी में बिलछानी दे दोगे। तो जीव वहां पर जहाँ से वो आए हैं पहुंचे ही नहीं, तो उनकी रक्षा तो नहीं हो पाएगी। तो फिर आप पानी बनने की बातें क्यों करते हो? तो इसका उत्तर ऐसे आता है कि देखिए जो शक्ति जा सकता है।
सुनाई नहीं दिया।
हेलो अनुभव जी, आई थिंक पासा डिस्कनेक्ट हो गया लगी। लेट मी कॉल हिम अगेन।
सॉरी
बहुत तकलीफ आपकी पड़ी। ભાનુબેન આ ચોખ્ખાઈ ની વાત આમ સાયન્ટિફિક રીતે બરાબર છે, પણ આત્માને તો ક્યાં એ ક્યાં?
એટલે મેં એટલે જ કીધું કે સાયન્ટિફિક આપણને એમ થાય કે ચોખ્ખા એટલે કે શું છે કે એનો જર્મ્સ કે એના આવે કે ઈ ધેટ વે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ
આઈ એગ્રી,
પણ એમાં તો એને તો ઉચ્ચ ગોત્ર ગોત્ર લઈ આવ્યા એટલે કે ઉચ્ચ નીચે એટલે એ મને ઇટ વોઝ ન મેકિંગ સેન્સ
આત્માનું ને કને કેવી રીતે કનેક્શન એ નો બહુ ખ્યાલ આવ્યો।
હા એટલે મને પણ ના સમજ પડી બહુ, મને એકદમ મન નથી
ના મને એમ કે નહીં। એટલે આપણે આમ જોઈએ તો ગુરુદેવ તો આત્મા બાબત બધું કહે છે રાઈટ, આપણે પ્રવચન જેટલા સાંભળીએ છીએ બધામાં, તો એમાં સ્વચ્છતા આત્માને ક્યાં જરૂર છે? નાવ ધોવો તમે ગમે તે કરો ઠીક છે, આ બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કીધા એ સાચા છે કે સાત સાત જગ્યાએ કે આઠ જગ્યાએ બોલવું ન જોઈએ એમ કીધું ને જમતી વખતે, આ બાથરૂમમાં હો નાતી વખતે એવી રીતે, એ ઓલરાઈટ છે, પણ આમ આત્માના રિલેટેડમાં કેવી રીતે બેસાડવા બધા નિયમો?
એટલે અહીંયા આ ઉચ્ચ ગોત્ર નીચ ગોત્ર ની હા, તો એટલે એ તો જીવ વિપાકી પરિણામ થયા એટલે એને એ મને એકદમ નથી બેસતી।
શંકા જે થાય ને ત્યારે આપણે સમજાવે છે તો આ સમાધાન આપણા મનમાં થઈ જાય કે ના આ રીતે આમ હોય શકે। સ્વચ્છતા માટે એગ્રી વિથ હિમ કે પગ ધોવા, પણ પહેલાના વખતમાં શું હતું, ધૂળ બહુ ઉડતી હતી એટલે લોકો ડર્ટી એટલા બધા આવેલા હતા, એટલે હાથ પગ
પાણી છાનને કી બાત
હતી, તો પાણી છાના આજ તો પોસિબલ નહીં હો પાતા હે। तो फिर वाली हम क्यों ऐसी क्रिया करते हैं? हमारे पास ऑलरेडी फिल्टर्ड वाटर है, कुछ हमारे पास है ही, अभी साफ पानी आता है, तब छानने की क्या जरूरत है? तो ये कहते हैं कि जो अशक्य मिष्ठान भी हो उसको भी क्रिया रूप में नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि आज पॉसिबल नहीं है, अगर आपको नहीं पता शायद कल पॉसिबल हो जाए, लेकिन यदि आज यदि सब लोग पानी को ऐसे छानकर ऐसे मिलछानी दी जाती है, ये वाली क्रिया बंद कर देंगे, तो कल पानी छानना तो संभव होगा, लेकिन किसी से पानी छानने की क्रिया का ही पता नहीं होगा, तो क्रिया खत्म हो जाएगी। इसलिए असत्य अनुष्ठान को भी जिनागम में करने की आज्ञा है। तो एक तो आपके परिणाम वहां पर स्थिर रहते हैं, प्लस एक वो क्रिया चली जाती, क्रिया चलती रहती है जिसके कारण भविष्य में जीवों की रक्षा होने की संभावना हो। बराबर।
तो परंपरा से क्रिया चालू रहे, ऐसा आपका कहना
मतलब भविष्य में जब हमारे यहाँ नहीं है और हमको नहीं पता पड़ रहा है कि उन जीवों की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही। बराबर। लेकिन एक तो प्राणी मरे या ना मरे हिंसा आयतनाचार से, कि एक तो हमको आयतनाचार से प्रवर्तना है, मतलब हमको प्रमादी नहीं होना है। तो आप प्रमादी नहीं होगे तो आप छानने की क्रिया करोगे, तो आप छानोगे, तो उसके बाद लेकिन जीव तो बच नहीं रहे, वो बहुत सूक्ष्म जीव है, आपको कैसे पता कि नहीं बच रहे, आपको तो दिख भी नहीं रहे, तो आपको एक तो वर्तमान में पता नहीं कि उनकी रक्षा हो रही कि नहीं हो रही, आप तो ऐसा सोच रहे हो कि चलो हमने यहाँ पर डाल दिया तो यहाँ कैसे बचेंगे जीव, बट हो सकता है एक दो जीव बच भी जाए। बराबर। तो पहले तो उनकी उस रक्षा के लिए वर्तमान में वो क्रिया चलेगी, प्लस भविष्य में यदि ऐसा ना हो कि सामने कुएं खुदे रखे हो, सामने हमारे पास ऐसी टेक्निक आ गई हो और हम यही नहीं जानते हो कि देखो पानी को छानने के बाद उसकी ऐसे छन्ने को साफ करके बिलछानी दी जाती है, यदि वो ही खत्म हो जाएगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी वहां पर। इसके लिए जो अशक्य हो लेकिन जो जिनागम में प्रणीत मूलभूत रात्रि भोजन छानकर पानी ये हो, इसको तो करना ही है। ठीक है। बराबर।
आयतनाचार
हो गया, हम प्रमादी नहीं हो रहे, हम तो सजग होकर उनकी रक्षा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे हम चाह कर भी नहीं बचा पा रहे, तो कोई लिखित हमारे परिणाम तो हुए ना रक्षा के, तो वो वाले परिणाम। तो ऐसे ही जो अभिप्राय है वो तो सम्यक रहेगा, तत्व के विचार और स्वरूप के अनुरूप रहेगा, लेकिन जो बाहर की क्रिया होगी वो विवेक के हिसाब से रहेगी, कि देखो यहाँ पर ये अशुद्धि हो गई है, तो अशुद्धि हो गई है तो हमको यहाँ पर इसको साफ कर लेना चाहिए, हमको शुद्धि कर लेनी चाहिए, ये सारे परिणाम उसके चलेंगे। ठीक है।
ये क्रिया विवेक में आएगी।
उससे अभिप्राय
अभिप्राय में तो हमको पता है क्योंकि आपका जब
हमारे अभिप्राय में ये पता है कि तो अनंत देव है, ये निर्लिप्त है, ये रागी द्वेषी नहीं है, ये तो देखते भी नहीं कि हम शुद्ध वस्त्र पहन के आए कि नहीं पहन कर आए, लेकिन विवेक ये है कि तीन लोग के नाथ के पास हम जा रहे हैं तो अशुद्ध मलिन कपड़ों में कैसे चले जाए।
बराबर।
हाँ। भगवान को थोड़ी पता है कि आप शुद्ध में आए कि अशुद्ध में आए,
नहीं उसको
हाँ।
तो वो
भगवान की भगवत्ता पर यदि वस्तु के तत्व के स्वरूप को देखे तो भगवान की भगवत्ता पर भी उससे कोई आंच नहीं आ रही कि जिसने अशुद्ध कपड़ों में छू लिया उनको, वो छोटे नहीं हो जाएंगे उससे, लेकिन ये हमें ही अंदर बहुमान नहीं कि इतने बड़े तीन लोग के नाथ के पास हम शुद्धता का विवेक रख के नहीं जाए, तो ये वाली तो ये जो क्रिया रूप जो होगा वह विवेक वह लोकाचार से धर्माचार से चलेगा, और उसके अंदर अभिप्राय को जागृत रखना, वेद ज्ञान की धारा चलाना कि शुद्ध वस्त्रों को पहनने वाला भी मैं नहीं, मैं तो चैतन्य ज्ञायक वस्तु हूँ, जानने वाली वस्तु हूँ, ये सब शरीर के और नौकर्म के ये सब साता वेदनी के उदय में प्राप्त सामग्री है, और ये सामग्री धर्म में नहीं लगे तो किस काम की, तो धर्म में बहुत गरिमा विनय से ये सारी सामग्री लगती है, ये तो अभिप्राय में निरंतर वेद ज्ञान की धारा, लेकिन क्रिया योग्य द्रव्य क्षेत्र करण धाव के हिसाब से। ठीक है। हम बात कर रहे हैं रूप मत की, तो अब देखिए तो शुभ और अशुभ ये है पुद्गल विपाकी, इससे शरीर सुंदर बनेगा, और सुभग और दुभग है ये जीव विपाकी है, इससे आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम सुंदरता से प्राप्त होंगे, जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो देखो हम लोग इतना शरीर से सुंदर बनना चाहते हैं, शरीर से एकदम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, सब हमको एकदम ऐसे चमकता हुआ शरीर हो एकदम खूबसूरत, लेकिन बात तो कुछ और है। तीन कर्मों के युगल है, एक शुभ अशुभ कर्म नाम कर्म, एक सुभग दुभग नाम कर्म, और एक यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति नाम कर्म। तीन हो गए, तीन युगल, तीन इंटू टू सिक्स। तो शुभ अशुभ सुभग दुभग यश कीर्ति और अयश कीर्ति, ठीक है, तीनों की कॉम्बिनेशन अब चलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें से चार जीव विपाकी है, सुभग और दुभग, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, ठीक है, और दो पुद्गल विपाकी है, शुभ और अशुभ। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी के शुभ नाम कर्म का उदय है, मतलब उसका शरीर, ये पुद्गल विपाकी कर्म है, ये शरीर को सुंदर बनाएगा, ठीक है, शरीर को सुंदर बनाए, लेकिन उसके अंतरंग में परिणामों की सुंदरता है ही नहीं, बहुत कंजूस है, बहुत घमंडी है, बहुत क्रोधी है, प्यार से बात नहीं करता, कर्कश शब्दों में बात करता है, तो उसको कोई पसंद नहीं करता, उसके पास कोई आना भी नहीं चाहता। उसके विभग नाम दुभग नाम कर्म का उदय है, तो बताइए उसकी सुंदरता, उसका मध किस काम का, लोक में तो उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे जो बहुत सुंदर है, बहुत वैभवशाली है, बहुत पैसे वाले भी होंगे, बहुत क्या बोलते दिमाग वाले भी होंगे, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, बट उनको कोई पसंद ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पसंद करने का संबंध शरीर से है ही नहीं, हम सभी चैतन्य द्रव्य को ही पसंद करते हैं, भले वो हम बिना सोचे कर लेते हो, हमको पता नहीं पड़ता, हमें लगता है हम शरीर को पसंद कर रहे हैं, बट हमारी प्रीति अप्रीति शरीर से नहीं होती, हम सामने वाले की भी कैसे वो बात करता है, कैसे वो आपकी मदद करता है, कैसे वो आपसे प्रीति से संवाद करता है, आपकी कितनी केयर करता है, आप उससे लोगों को पसंद करते हो, राइट? अरे वो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अरे वो कभी गुस्से ही नहीं करता, आप कोई भी बात बोलो तुरंत समझेंगे वो, अरे उनके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, राइट? तो हम लोक में भी लोगों को उनके परिणामों से ही पसंद करते हैं, अरे नीनी वो बहुत क्रोधी है, बहुत नहीं नहीं उसको बहुत घमंड है, क्रूर है, नहीं नहीं भैया उनकी बातों में बता ना, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, राइट? तो लोग भी हमको परिणामों से देखते हैं। तो हमारा ये जितना भी बाहर का श्रृंगार, बाहर का मेकअप, बाहर के सुंदर कपड़े, बाहर का वैभव, ये सब का इससे आप लोग में प्रीति के पात्र बनेंगे, सब आपको पसंद करने पड़ेंगे, करने लगेंगे, इस गुरूर में मत रहना। हमारा पूरा जीवन और आज की तो जनरेशन का कि आप कितने सुंदर हो, तो हम अलग अलग से प्रॉप्स बनाते हैं, बैकग्राउंड को सही करते हैं, सिर्फ फोटो बहुत अच्छी है, राइट? एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अ फ्रेम नाउ कि हम यहाँ पर लेकर फोटो लेंगे, एंड देन आई हैव अ डीपी, आई हैव लाइक व्हाट्सएप डीपी डिफरेंट, इंस्टा डीपी डिफरेंट, फेसबुक डीपी डिफरेंट, राइट? एवरीबॉडी इज लुकिंग एट द फ्रेम। और अभी आप कहीं इसलिए कोई भी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर फोटो का सेक्शन ही अलग कर देते हैं, क्या आप से लेकर अपनी फोटोज ले सकते हो, प्रॉप्स भी रहते हैं, सब रहते हैं, राइट? करेक्ट। लेकिन अभी जो हमारा पूरा यत्न जा रहा है कि हम शरीर को, हम जो एक स्क्रीन पर फोटो बन गई उसको कैसे सुंदर बनाए, फिर एक बार फोटो ले ली, फिर उसके फिल्टर्स लगाएंगे फोटोशॉप से, उसकी ब्राइटनेस, उसका डेकोरम पूरा सब कुछ अलग अलग करेंगे, एंड देन वी अपलोड द फेक फोटो, जैसी छिड़ी नहीं, हमने फिल्टर से उसको सही किया और लगा कर दिया। देखो अभी तक हम शरीर को सजाते थे, अब तो गजब का युग आ गया, लोग फोटो को सजा रहे हैं, फोटो कितनी भी खराब हो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं उसको एडिट करके ऐसा बना दूंगा, मतलब मत आ जाएगा आपको, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग दिस डे, सारे फिल्टर्स से सब, आखिरी में वो मैं कैसा भी हूँ फोटो सुंदर दिखनी चाहिए, ये तो अलग ही योग आ गया है, क्योंकि अभी तक तो शरीर को ही सजा रहे थे लोग, अब शरीर को भी छोड़कर किसी प्रोफाइल को सजा रहे कि हमारी वॉल वो सुंदर दिखनी चाहिए, ऑनलाइन में जो हमारी पूरी दुनिया है जिससे लोग मुझे जानते हैं वो मेरा सुंदर दिखना चाहिए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि शरीर की सुंदरता भी जगत में आपको सब प्रीति करे, ये इसकी गारंटी नहीं। तो फिर कैसे गारंटी है कि अंदर एक जीव विपाकी नाम कर्म और है, सुभग और विभग। सुभग का उदय होगा तो आपका बाहर का शरीर सुंदर हो या कुरूप हो, डजंट मैटर, आपको सब पसंद करेंगे। और यदि विभग है तो आपका शरीर कुरूप हो या बहुत सुंदर, तो भी लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बराबर, ये जीव विपाकी है, जीव के परिणाम कैसे सुंदर होते हैं। अब इसके साथ ठीक है, आप सुंदर भी हो और आपका सुभग नाम कर्म भी है, आपको सब पसंद भी करते हैं, लेकिन आपका अयश नाम कर्म है तो लोक में तो आपकी निंदा होगी। देखो सीता जी सुंदर भी और सुभग भी, सब उनको पसंद करते हैं, लेकिन अपयश नाम कर्म का उदय आया तो देखो उन पर कैसा कलंक लगा, लोक विवाद लगा। द्रौपदी जी सुंदर भी है सुभग भी है, सब पसंद करते हैं, लेकिन कैसी लोक में कहानियां चलती है, पंच भर्तारी उनके पांच पति थे। अब ये कोई कहने की बात हुई किसी के बारे में, लेकिन ये लगा तो लगा, तो ये अपयश नाम कर्म। तो देखो आप सुंदर भी हो जाओ और आपको सब पसंद भी करें तो आपकी कीर्ति जगत में होगी, आपका नाम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए तो यश नाम कर्म चाहिए, और वह भी कैसा है, जीव विपाकी कर्म है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो बाहर के रूप का मद है ये किस लिए है, इसलिए सब आपको पसंद करें। तो आपके शरीर से तो कोई आपको पसंद करता नहीं, वो तो सुबह आपके परिणामों की सुंदरता से करता है। तो अब सुभग आदि के लिए तो हम प्रयत्न नहीं करते, हम उसके लिए प्रयत्न भी क्या करें, प्रयत्न ये है कि हम अपने परिणामों को सुंदर रखें, तो उस कर्म का उदय आने लगता है। तो उसके लिए तो कोई प्रयत्न नहीं करता, निरंतर शरीर को ही जैसे तैसे।
हाँ ड्रॉप थे गया लगे छे, एक मिनट
लास्ट टाइम ले आ वो पति
એટલે અત્યારે મદ વિશે સમજાવે છે ને આપણને,
એટલે રૂપ મદ એટલે કે ગમે એવા સમય એટલે કે રૂપાળા હો અને આજે તો રૂપાળા ના હોય તો એ બધા ઓલા ફોટા લઈને પછી ફોટા ઓલા બ્રશ અપ ને કરે ને, એટલે સરસ ફોટા દેખાય બધા, એના બધા રૂપાળા દેખાય ફોટા માં આજે એમ।
હેલો
સોરી આજ ક્યાં હો રહા હૈ, ડોન્ટ નો,
બસ અભી યે લાસ્ટ યે ફિનિશ કર લો ફિર હમ
ટાઈમ તો હો ગયા હૈ
હમારા હમારા કોન સા કર્મ કા ઉદય હૈ અભી।
नहीं 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 ऐसे
ड्रॉप होने का उदय है।
तो ये झूठ का की तो मतलब ये तो बहुत ही कितना बड़ा मिथ्या दृष्टि, इसलिए यहाँ पर प्रगट सम्यक दर्शन के सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षणों में क्लियरली इसको स्पेसिफाई किया कि सम्यक दृष्टि के रूप का मद नहीं होता, क्योंकि रूप का मद होना कितना बड़ा मिथ्यात्व है। जिस रूप से हमें कोई पसंद भी नहीं करता, जो रूप हमारा नहीं, यदि इधर बाहर की स्किन को निकाल दे तो जिसको कोई देखना पसंद नहीं करे, ऐसा अशुद्धि अपवित्र शरीर, इसका कौन मद करे। क्या उसमें यह ना रेस्ट्रिक्शन रंग की पूजन में करते हैं, भी बाहर अमल मन भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि करे, कि एक घड़ा है बाहर से एकदम साफ चमकता हुआ लेकिन उसके अंदर मल भरा हुआ है, कौन छुएगा उस घड़े को?
कोई नहीं छुए।
कौन उस घड़े को सुंदर बोलेगा? कोई उस घड़े के पास भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन वो ही तो ये शरीर है। बाहर इसके रूप से एकदम चमचमाता हुआ सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर यदि देखें तो इस घड़े के अंदर मल ही तो है, मांस है, मज्जा है, हड्डियां है, पीप है, रक्त है, तो इसमें सुंदरता क्या है? और इसका कोई मन करे कि मैं इतना सुंदर, तो फिर कोई इस पर इसके मिथ्यात्व की सघनता समझ में आती है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका मिथ्यात्व है। इसलिए जिसके रूप का मत हो वह समय दृष्टि कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, अनंतानुबंधी संबंधी मन की बात है और प्रत्यक्षानुबंधी आदि कषाय संबंधी मन तो जीवों के चलता है, लेकिन वह भेद ज्ञान के साथ वाला होता है, भूमिका के साथ वाला होता है। जैसे कि सनत कुमार चक्रवर्ती के संबंध में कथा प्रसिद्ध है कि उनके पास दो देव आए और उन्होंने उनको देखा तो एकदम व्यायाम कर रहे थे अपनी व्यायामशाला में और शरीर पूरा पसीने से लथपथ और श्रृंगार के बिना, तो देवों ने देखा तो वो देखकर दंग रह गए, इतने सुंदर कैसे हैं। तब उन्होंने बोला कि भैया अभी नहीं, आप तुम हमको वहां देखना जब हम राजसिंहासन पर बैठेंगे। तो अब उतना का मान उसकी चर्चा की जाती है, लेकिन देखिए सम्यक दृष्टि पुरुषों की शरीर संबंधी मान कैसा होगा? जैसे कि नैनीनाथ मुनिराज नैनीनाथ कुमार की भी हुआ, क्या हुआ, श्री कृष्ण को थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब जब वो लोग क्रीड़ा के लिए गए थे तो वहां पर उनकी पत्नी श्री कृष्ण की पत्नी बड़ी सद्भावना किसी ने कह दिया नैनीनाथ कुमार ने अपने कपड़े उनको धोने के लिए दे दिए, तो उनको लगा भैया मैं देखो श्रीखंडी की पत्नी हूँ और मुझसे ऐसा काम बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण गए और सॉरी नैनी कुमार गए श्री कृष्ण की नाक शिला पर बैठे और वहां पर उन्होंने अपनी नाक से उनके शंख को फूका, राइट। तो उन्होंने अपने बताया कि भैया देखो श्री कृष्ण के मान के सामने के बल के सामने तीर्थंकर का बल कितना बड़ा होता है और सब घबरा गए। बराबर, तो इतना मान तो नैनी कुमार के भी आया ना कि दिखा तो नहीं हो गया ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। लेकिन ये मान एकत्व बुद्धि वाला नहीं है, महत्व बुद्धि वाला नहीं है, ये वाला मान अप्रत्यक्ष के उदय में योग्य जितना रूप कोई जाति वैभव हो उसके हिसाब से गरिमा वाला कि देखो मान का क्या स्वरूप, यदि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमारे कुल का अपयश होगा, तो हमको ये काम करना शोभा नहीं देता, ये हमारे कुल का मान है। तो ये जो योग्य जो नीतिमय हो, जो धर्म नीति और लोक नीति के काम आए, उतनी गरिमा उतना मान सम्यक दृष्टियों के भी होता है। अब कोई राजा हो तो उसको राजा जितना मान तो रखना पड़ेगा ना कि अपनी गरिमा का। तो चक्रवर्ती शैखंड की विजय के लिए गए, तो अब जो राजा नहीं झुकते थे उनके ऊपर बहुत क्रोधी हो जाते थे, क्यों नहीं झुक रहे, क्योंकि अब वह चक्रवर्ती है, उसको सारे लोग सारे राजाओं को अपने वश में करना है ना, तो उसके चक्रवर्ती जितना को रहेगा। तो इस हिसाब से भूमिका तो यहाँ पर एकत्व बुद्धि वाले मतों की बात है, तो एकत्व बुद्धि के साथ शरीर कुल जाति में मत करते हैं उनकी बात है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न?
हाँ, यहाँ अभी रुकते हैं अनुकूल जी।
हाँ हाँ, एक बार देखिएगा यदि कोई आपको प्रश्न हो तो फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे, अपनी चिंता
रेखी
करते हैं। उपकार उसके लिए चिन्ह शत पारे उसके लिए